हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। दूसरी तरफ सुबह से लगातार चलती मीटिंग 8 बजे खत्म हुई। तब तक बाकी स्टाफ जा चुका था और मीटिंग खत्म होते ही बाकी लोग भी जल्दी जल्दी अपना सामान समेट कर घर के लिए निकल गए। माधुरी ने मीटिंग में देर होते देखकर धृति को मैसेज कर दिया था कि वो आज अकेली घर चली जाए। फिर भी जाने से पहले उसने एक बार धृति का केबिन चेक किया और जब धृति वहां नहीं दिखी तो घर के लिए निकल गई। कबीर और बाकी सब भी चले गए। अर्नव भी अपना सामान पैक करके घर के लिए निकल गया। सबसे ऑफिस से जाते ही गार्ड ने मेन पावर स्विच ऑफ किया और फिर ऑफिस बंद करके वो भी चला गया और धृति उस रिकॉर्ड रूम में अंधेरे में बंद बस आवाज देकर मदद की गुहार लगाती रही। अर्नव घर पहुंचा। कई दिनों बाद आज ऑफिस गया था वो। आज वो बुरी तरह भका हुआ था। शरीर और दिमाग दोनों को अब आराम की सख्त जरूरत थी और सबसे पहले उसे फ्रेश होना था ताकि थकान कुछ कम हो। अर्नव सीधे सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। कमरे के अंदर आते हुए उसने अपना कोट और टाई खोलकर सोफे पर पटक दिया और कलाई पर बंधी घड़ी खोलते हुए ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। अर्नव ने कार की चाबी और घड़ी खोलकर ड्रेसिंग टेबल पर रखी और जैसे ही बाथरूम में जाने को पलटने लगा उसकी निगाहें ड्रेसिंग टेबल पर रखे धृति के झुमकों पर पड़ीं। अर्नव ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया और बेड की तरफ नजरें घुमाई तो पहले जैसे ऑफिस से आने पर उसे अपने कपड़े वहां रखे मिलते थे, आज उसके रात के कपड़े वहां नहीं रखे थे। ये देखकर अर्नव को चौंक गया क्योंकि जब से उसने धृति को सब काम सौंपे थे उसके बाद से वो हर काम वक्त पर और पूरी तल्लीनता से करती थी, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ती थी, जिसके वजह से भी अर्नव बखूबी वाकिफ था। आज पहली बार था जब उसके आने पर न उसे उसकी कॉफ़ी मिली थी और न ही उसके कपड़े निकाल कर रखे गए थे। अर्नव को कुछ ठीक नहीं लगा। वो तुरंत कमरे से बाहर निकला और कॉरिडोर से नीचे झाँकते हुए शीला को तेज़ आवाज़ में पुकारा। शीला? यस सर, शीला ने तुरंत ही जवाब दिया और नीचे से सर उठाकर अर्नव को देखने लगी। तुम्हारी मैम कहाँ है? मैडम तो आज अभी तक आई ही नहीं सर, शीला ने चिंता भरे स्वर में जवाब दिया, जिसे सुनकर अर्नव के माथे पर बल पड़ गए। धृति कभी ऐसे नहीं करती थी, वो इतनी गैर जिम्मेदार नहीं थी, वक्त पर घर आती और अपना सब काम संभालती थी। अर्नव ने सर हिलाया और तुरंत ही पॉकेट से फ़ोन निकालकर धृति को फ़ोन लगाया, पर उसका नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। अर्नव अब और ज्यादा परेशान हो गया। उसने अपनी उंगली से अपनी भौं खुजाते हुए फिर से धृति को कॉल लगाया, पर इस बार भी वही जवाब आया। अर्नव माथे पर बल डाले सोचने लगा कि धृति कहाँ रह गई आज और उसका फ़ोन क्यों नहीं लग रहा। एकाएक उसके दिमाग में सुबह की बात कौन थी। सुबह से लगातार चल रही मीटिंग के कारण अर्नव मानसिक तौर पर थका हुआ था। उसके दिमाग से धृति का ख्याल बिल्कुल ही निकल गया था। उस पर धृति उसके साथ नहीं आई थी, इसलिए अर्नव को उसका ख्याल तक नहीं आया और न ही उसे याद रहा कि सुबह उसने ही धृति को रिकॉर्ड रूम में भेजा था। इसके साथ ही उसे ध्यान आया कि वहाँ नेटवर्क का इशू रहता है, कहीं धृति अब तक वहीं तो नहीं। ये ख्याल मन में आते ही अर्नव बेचैन हो गया। वो हड़बड़ी में वापस कमरे में आया और अभी अभी जो चाबियां ड्रेसिंग टेबल पर रखी थी जल्दी से उसे उठाया और बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। शीला और बाकी नौकर उसे इतनी जल्दबाजी में घर से जाते देखकर अवाक से बस उसे आंखें फाड़े देखते ही रह गए, जबकि अर्नव को अभी किसी का ख्याल नहीं था। उसके दिलो दिमाग पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ धृति छाई हुई थी। वो नफरत करता था उससे, फिर भी उसे धृति की चिंता सता रही थी। मन उसके ख्याल से व्याकुलता हो उठा था कि वो ठीक होगी भी या नहीं। फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ाते हुए अर्नव सारे रास्ते बस धृति के बारे में सोचता रहा और बार बार उसका कॉल ट्राई करता रहा। ऑफिस में पहुंचते ही उसने झटके से अपनी गाड़ी रोकी और जल्दी से बाहर निकलकर ऑफिस के गेट की तरफ बढ़ गया। उसने पासवर्ड डालकर डोर खोला पर पूरा ऑफिस अंधेरे में डूबा हुआ था। मेन पावर ऑफ था और वहां की चाबी सिर्फ गार्ड के पास थी, इसलिए अर्नव ने अपना फोन निकाला और फ्लैशलाइट जलाकर सीढ़ियों को जल्दी जल्दी पार करते हुए बेसमेंट की तरफ बढ़ गया। वो बेसमेंट में पहुंचा तो सीढ़ियों पर ही उसे धृति की धीमी सी आवाज सुनाई पड़ी। कोई है बाहर? प्लीज दरवाजा खोल दो, बहुत अंधेरा है यहाँ, बहुत डर लग रहा है मुझे, कोई तो मेरी मदद करो, मैं फंस गई हूँ यहाँ, दरवाजा नहीं खुल रहा मुझसे, यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, बहुत डर लग रहा है मुझे, प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दीजिए, मुझे घर जाना है। बोलते बोलते धृति रुआंसी हो गई। जाने कब से वो मदद के लिए गुहार लगा रही थी, पूरी तरह थक गई थी वो। आवाज भी बैठ गई थी, उसकी सिसकियों की धीमी सी आवाज वहां गूंज रही थी। उसकी आवाज में उसका डर और भारीपन साफ महसूस किया जा सकता था। अब भी धृति धीरे धीरे से किसी को मदद के लिए बुला रही थी। शायद अब जान नहीं बची थी उसमें, पर एक उम्मीद अब भी बाकी थी कि शायद कोई आकर उसे यहाँ से निकाल ले। धीरे धीरे मदद की गुहार लगाते हुए वो दरवाजा पीट रही थी। अर्णव के कानों में जब धृति की आवाज पड़ी तो उसका दिल तड़प उठा। वो तुरंत सीढ़ियां भांदते हुए दरवाजे के पास पहुँच गया और व्याकुलता से धृति को पुकारा। धृति, धृति जो हर तरह से थक और हार चुकी थी, जिसने लगभग उम्मीद का दामन भी छोड़ दिया था कि अब कोई आएगा उसके लिए यहाँ। जब उसके कानों में अर्णव की आवाज पड़ी तो उसकी टूटती हिम्मत को संबल मिल गया। अर्णव की आवाज उसके लिए दीपक की उस रोशनी जैसी थी जो बरसों से अंधेरी गलियों में भटकते मुसाफिर को जीवन की एक नई किरण से रूबलू करवाए, जो उसके दिशाहीन जीवन को एक दिशा दे जाए। बिल्कुल वैसे जैसे बाढ़ में डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो, जिसने उसे जीवन की एक नई उम्मीद दी हो। धृति अर्णव की आवाज सुनकर बेचैनी से सिसकते हुए बोल पड़ी, मिस्टर सिंह, मुझे यहाँ से निकाल दीजिए, ये दरवाजा नहीं खुल रहा। मैं कब से कोशिश कर रही हूँ, लाइट भी बंद हो गई। यहाँ बहुत अंधेरा है, अजीब सी आवाजें आ रही हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दीजिए। आप जो कहेंगे मैं सब करूँगी, आपकी सब बात मानूंगी, आपकी दी हर सजा भुगतूंगी, आपसे कोई सवाल भी नहीं करूँगी। बस मुझे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, मेरा दम घुट रहा है, यहाँ सांस नहीं आ रही मुझे। प्लीज आई बेग यू, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। गेट के दूसरे तरफ मौजूद धृति इतनी डर गई थी कि अर्णव के आगे गिड़गिड़ाने लगी थी, और अर्णव जो बस धृति को तकलीफ पहुंचाना चाहता था उसे अपने आगे झुकाकर जिसे संतुष्टि और खुशी मिल रही थी, आज धृति के शब्द उसके सीने को छलनी करते जा रहे थे। सीने में तेज दर्द सा उठा था, ऐसा लगा मानो किसी ने उसके दिल को अपनी मुट्ठी में भरकर भींच दिया हो। अर्णव उसकी बातें सुनकर एक पल को स्तब्ध सा रह गया। दिल में एक टीस सी उठी, धृति की सिसकियां उसके चेहरे पर दर्द बनकर छा गई, पर जल्दी ही उसने खुद को संभाला और बड़े ही नरमी से बोला, धृति शांत हो जाओ, मैं आ गया हूँ ना, मैं अभी तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। पहले तुम रोना बंद करो और दरवाजे से थोड़ा पीछे हट जाओ, वरना दरवाजा खुलेगा तो तुम्हें चोट लग जाएगी। अर्णव की बात सुनकर धृति ने अपनी हथेलियों से अपने आंसुओं को पोंछा, फिर पीछे हटते हुए बोली, अब नहीं रो रही मैं, पीछे भी आह। बोलते बोलते अचानक ही धृति की दर्द भरी चीख वहां गूंज उठी, जिसे सुनकर अर्णव घबरा गया और बाहर से दरवाजा पीटने लगा। धृति, धृति क्या हुआ, तुम ठीक हो? धृति कुछ तो बोलो, तुम ठीक हो ना?
अंदर धृति पीछे हट रही थी, जब अंधेरे में ठीक से कुछ न दिखने के कारण उसका पैर किसी चीज में उलझा और वो मुंह के बल फर्श पर जा गिरी और उसकी चीख निकल गई। पर जब उसके कानों में अर्णव की चिंता भरी आवाज पड़ी तो उसने जल्दी से खुद को संभाला। हाँ, मैं ठीक हूँ, अब दरवाजा खोल दीजिए। अर्णव ने गेट का नॉब घुमाया पर दरवाजा अब भी नहीं खुला। अर्णव ने अब नॉब घुमाए हुए ही अपने कंधे से दो चार बार दरवाजे को धक्का दे दिया। वह गेट पहले तो ढीठ ताकर अड़ा रहा, पर जब अर्णव ने पूरा जोर लगाकर दरवाजे को धक्का मारा तो अब की बार दरवाजा एकाएक खुल गया और अर्णव धड़धड़ते हुए सीधे रिकॉर्ड रूम के अंदर दाखिल हुआ। उसने जल्दी ही खुद को संभाला और निगाहें उठाईं। इतने में धृति झटके से आकर उसके सीने से लिपट गई और अपनी बाहों को उसकी पीठ पर लपेटते हुए फफक कर रो पड़ी। शायद बहुत ज्यादा डर गई थी वो, इसलिए अब उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अर्णव की पीठ पर अपनी बाहों को कुछ इस प्रकार से कसा हुआ था जैसे वो उसे खुद से दूर जाने से रोक रही थी। उसके सीने में मौजूद दिल भी जोरों से धड़क रहा था, जिसकी आवाज धृति की सिसकियों में घुलती जा रही थी। अर्णव उसकी पकड़ में उसका डर और पीड़ा महसूस कर पा रहा था, और आज उसे दर्द में देखकर सबसे ज्यादा तकलीफ अर्णव को हो रही थी, जबकि वो हमेशा उसे तकलीफ पहुंचाने को तत्पर रहता था। धृति के आंसू अर्णव की सबसे बड़ी कमजोरी थी, जिसके आगे वो पत्थर दिल अर्णव हर बार बर्फ की तरह पिघल रहता था। आज धृति के आंसू जो उसकी शर्ट को भिगो रहे थे, वो गरम नमकीन पानी की बूंदें अर्णव के सीने को तेजाब जैसे जला रही थीं। अर्णव को एहसास तक नहीं हुआ कि कब उसकी एक बाह ने धृति को अपनी कमर को थामते हुए उसे खुद से सटा लिया और कब दूसरा हाथ उसके सर पर पहुंच गया। धृति को अपनी बाहों में भरे अर्णव उसके बालों पर हाथ फेरते हुए उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। उसके स्पर्श में प्रेम था या नहीं ये तो कहना अभी जरा मुश्किल था, पर आज उसके स्पर्श में स्नेह और अपनापन था जिसे उसके सीने से लगी धृति बखूबी महसूस कर पा रही थी। अर्णव धृति के सर पर हाथ फेर ही रहा था जब धृति की बाहों की पकड़ ढीली हो गई और उसका सर निबदन का ऊपरी हिस्सा निढाल सा एक ओर झुकने लगा। अर्णव ने तुरंत उसे अपनी बाहों में थामा और उसे लेकर वहीं बैठ गया। धृति के सर को अपने थाई पर रखे वह उसके गाल को थपथपाते हुए व्याकुलता से उसे पुकारने लगा, धृति धृति क्या हुआ तुम्हें, धृति आंखें खोलो, धृति ओपन योर आइज, धृति धृति। अर्णव लगातार उसके गाल को थपथपाते हुए उसे पुकारता रहा, पर धृति ने न अपनी आंखें खोली और न ही उसके शरीर में कोई हलचल हुई। आखिर में अर्णव ने यहाँ और समय न बर्बाद करते हुए धृति को अपनी बाहों में उठाया और किसी तरह फोन में लाइट जलाकर ऑफिस से बाहर निकल गया। उसने धृति को पैसेंजर सीट पर बिठाकर सीट बेल्ट लगाई और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। पहले उसने डॉक्टर को फोन करके घर बुलाया और गाड़ी वापस घुमाकर तेजी से घर की तरफ बढ़ा दी। सारे रास्ते में कई बार उसने धृति को उठाने की कोशिश की, उसे पुकारा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। घर पहुंचकर उसने एक बार फिर धृति को अपनी बाहों में उठाया और अंदर की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद डॉक्टर धृति को चेक कर रहे थे और अर्णव वहीं खड़ा परेशानी निगाहों से धृति को देखते हुए बेचैनी से यहाँ अपनी उंगलियों को तोड़ मरोड़ रहा था। शीला भी एक तरफ खड़ी थी और धृति के लिए काफी चिंतित नजर आ रही थी। डॉक्टर ने धृति को चेक किया, उसके हाथ के जख्म को साफ करके पट्टी बांध दी, उसे एक इंजेक्शन लगाई, फिर कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्रिप्शन पर लिख कर उसे अर्णव की तरफ बढ़ाते हुए बोले, चिंता की कोई बात नहीं है, आपकी वाइफ डर के वजह से बेहोश हो गई हैं, फिर शायद सुबह से उन्होंने कुछ खाना पीना नहीं है, इसलिए शरीर में कमजोरी है और पानी की कमी है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ ही देर में उन्हें होश आ जाएगा, उसके बाद उन्हें खाना खिला दीजिएगा, और वैसे तो दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर उनकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ है, अगर रात को बुखार आए तो ये दवाई दे दीजिएगा, और एक ऑइंटमेंट भी है, आपकी वाइफ के हाथ में स्वेलिंग हो गई है, दवाई लगाने से हाथ जल्दी ठीक हो जाएगा, और अगर दर्द हो तो दवाई में पेन किलर भी है, दे दीजिए उन्हें, और अगर जरूरत पड़े तो कल दोबारा आ जाऊंगा मैं उन्हें देखने, अभी मैं चलता हूँ। अर्णव ने सर हिला दिया, डॉक्टर को उनकी फीस दी, फिर प्रिस्क्रिप्शन शीला को देकर दवाई मंगवाने और खाना बनाने को कहा, तो वह भी वहाँ से चली गई। अब वहाँ सिर्फ अर्णव और धृति ही रह गए थे। अर्णव कुछ पल दूर खड़ा एकटक धृति के चेहरे को देखता रहा जो एक ही दिन में कुम्हला गया था, फिर धीमे कदमों से उसके पास आकर बैठ गया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। इस लम्हे में अर्णव अपनी सारी नफरत भूल गया था, उसे बस धृति को ऐसे देखकर बुरा लग रहा था और उसकी चिंता सता रही थी। अजीब सी बेचैनी ने मन को घेरा हुआ था। अब भी अर्णव की नजरें धृति के चेहरे पर टिकी थीं। कमिंग सून।